रहनेता राजमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तेषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए भक्ति का सहारा ले रहे हैं क्योंकि हमने जान लिया है कि भक्ति भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने में हमारी मदद करती है। भक्ति के साथ जरूरी है हमारी अपनी श्रद्धा, हमारा अपना समर्पण, और समर्पण जितना अधिक हमारा बढ़ता चला जाता है, जितने हम भगवान के गुणों के प्रति अनुरक्त होते चले जाते हैं, जितना जितना हम उन गुणों को अपने जीवन में पाने की भावना को प्रबल बनाते जाते हैं, उतना हमारा जीवन अच्छा बनता है। असल में भक्ति हमारे जीवन को कैसा बनाना चाहिए इस बात की प्रेरणा देती है, क्योंकि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारा आदर्श है, और हर आदर्श हमें अपने जैसे ही आदर्श बनाने की प्रेरणा देता है। और यदि हम भगवान की भक्ति को सचमुच पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं तो उनका जो आदर्श स्वरूप है वो हमें वैसे ही बनने के लिए प्रेरणा देता है, हमारा विवेक जागृत करता है। असल में अकेले प्रेरणा से भी काम नहीं बनता, वो प्रेरणा हमारे अंदर विवेक जागृत कर दे तो कितना सारा काम भक्ति करती है। एक तो हमारे मन में श्रद्धा और समर्पण उत्पन्न होता है, इतना ही नहीं हम अपने जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसे आदर्श मानते हैं, वैसे बनने की हमारे भीतर प्रेरणा जागृत होती, और फिर सचमुच हमारे भीतर विवेक जागृत होता कि ठीक तो है, कर क्या रहे हैं, ये तो ऐसे संसार हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे अपने उस आदर्श स्वरूप की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, मैंने जिसे आदर्श माना है उसके जैसे बनने के लिए मैं दिन भर में कोई प्रयास करता हूं या कि नहीं करता हूं, या सिर्फ उनकी भक्ति और आरती पूजा करके लौट आता हूं। ऐसा हमारे भीतर अपने आत्म कल्याण का विवेक जागृत हो जाता है, और फिर जो जो अविवेक पूर्ण हमने जीवन जिया है वो सब अब हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है। हमने कैसे अपना जीवन जिया? अविवेक पूर्वक, ऐसे ही कि जो हमारा स्वरूप नहीं था उसको हमने अपना मान लिया, यही तो हमारी गैर बुद्धि मानी थी, यही तो हमारा अविवेक था। हम जब मनुष्य थे या अभी मनुष्य हैं तो हम अपने को मनुष्य मान के जीने लगते हैं, कभी हम देव बन जाते हैं तो अपने को देव मान लेते हैं, कभी नरक में हम दुख सहते हैं तो ये मान करके कि अब तो कोई बचने का उपाय ही नहीं है, मुझे तो ये दुख भोगना ही पड़ेंगे, मेरी तो नियति ही ऐसी है। ऐसा मैं एक भ्रम पाल लेता हूँ, ऐसा मैं अविवेक पाल लेता हूँ, भगवान के दर्शन करते ही उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर उमड़ते ही और हमें ये विवेक जागृत हो जाता है, हो जाता है, हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हमने इस मनुष्य पर्याय को ही अपनी नियति मान लिया है, क्योंकि पज्जे मूरा ही पर समया, जो अपने को इस पर्यायवान ही मान लेता है वही तो अविवेक पूर्ण जीवन है। हमें उस अविवेक को छोड़ करके अपने उस आदर्श स्वरूप को स्मरण में ला करके वैसे बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या हुआ था एक बार, ये स्यार होता ना जंगल में, तो वो थोड़ा सा जंगल से हट करके और गांव में आ गया। वहाँ पर एक जो रंगरेज जो कपड़ों को रंगने का काम करता था, तो उसके बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे जिसमें कि वो कलर बनाता था और फिर कपड़े उसमें रंगता था। अब उसको कुछ सूझा नहीं अंधेरे में, तो वो एक ड्रम में धोखे से गिर गया। उस ड्रम में तो नीला रंग था और वो उसमें पड़े रहा। सुबेरे जब वो आया रंगरेज, तो उसने उसको उसमें से निकाल के भगाया, ड्रम उल्टा कर दिया तो भाग गया वो। लेकिन उसका रंग तो जो है वो बिल्कुल एकदम नीला हो गया। नीले रंग का जानवर तो बिल्कुल अलग ही, अब वो अलग दिख रहा है। बाकी जानवर उसको बहुत गौर से देख कर के दूर दूर हट रहे हैं। अब उसको समझ में आया कि मौके का लाभ उठाना चाहिए, मैं तो कुछ अलग ही हो गया हूं अब। और सचमुच उसको ऐसा लगा कि मैं अब इस पूरे जंगल का राजा बनने लायक एक अलग ही प्राणी हूं। और बस उसने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया जो मिलता कि पहचानते हो, मैं तुम सब लोगों के ऊपर राज करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया हूं। अब आ सकता है ऐसा? अब अपन कहेंगे कि कितना बुद्धू है वो, और अपन तो भी तो ऐसे ही बने फिरते हैं, सारे संसार का हिसाब किताब बनाने जैसे भगवान ने हमें को भेजा हो, नहीं बने फिरते हैं? वो ठीक है, वो तो पशु है तो उसको चाहे जो कह लो, पर अपन भी तो ऐसे ही बने फिरते हैं जैसे सब कर्ता भोक्ता और सब हम ही हों, संसार के स्वामी हों। यही तो हमारा अविवेक है, हम अपनी इस पर्याय में और अपना आपा मान करके अपने वास्तविक चेहरे को भूल जाते हैं, अपनी जो वास्तविकता है वितरागता है उसको भूल जाते हैं और संसार के राग द्वेष में फंस जाते हैं। जितना जितना मेरा राग द्वेष है उतना ही मेरा अविवेक है। मुझे अपने विवेक को जागृत करके अपने राग द्वेष को हटा करके वितरागता प्राप्त करनी चाहिए। भगवान की भक्ति मुझे यही प्रेरणा देती है। और फिर क्या हुआ, जैसा होना था सब घबराए। उन्होंने कहा भैया मान लो, क्योंकि ये तो जो है वो समझ में नहीं आ रहा कौन से जगत का प्राणी है, कहां से भेजा गया है, किस ग्रह से आया है ये, क्योंकि ऐसा कलर तो अपन ने देखा ही नहीं। तो सब ने जो भी मीटिंग वीटिंग करना थी जैसी होती है, तो वैसे मीटिंग वीटिंग होकर तय हो गया कि भैया ये ही अध्यक्ष, कौन पड़े झगड़े में। शेर भी आ गए, शेर को भी कहना पड़ा कि ठीक है भैया हमने छोड़ी अपनी सीट और इन्हीं को बिठाओ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि स्यार वगैरह को अगर जंगल में शेर शिकार करे और वो छोड़ के चला जाए तो सब इकट्ठे होकर के फिर उसकी दावत करते हैं। हाँ, ऐसा उनका जो भी हो डिसिप्लिन। अब सारे स्यार इकट्ठे हुए और जब दावत होती है तो बड़े खुश होते हैं वो, कोई भी हो, अपना थोड़ा अलग है दावत करने का। अपन रात में टेबल कुर्सी बिछा करके और फिर जुड़ जाते हैं एक साथ, सब चारों तरफ से झपटते हैं उस पर, वो बीच में पड़ा रहता है, वो जैसे जंगल में पड़ा रहता वैसे यहां पर भी वो जरा सजा के रखा जाता, वहां ऐसी अट्रेंडम पड़ा रहता, ज्यादा फर्क नहीं। हाँ ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ जमा हुआ रहता। फिर बाद में वहां से, वहां तो विसिल विसिल भी नहीं बजाना पड़ती, यहाँ तो विसिल बजती है शायद कि हाँ साहब शुरू बस। तो फिर सब जो है करते ही निवेदन करते होंगे मेरे ख्याल से कि हाँ अब हो गया समय, आज 10 बज गया, हो गया समय, तो सब जुट जाते हैं, वो भी जुट गए। अब जब जुटते हैं तो बड़ी प्रसन्नता जाहिर तो करेंगे ही, जब इतना बढ़िया भोजन मिल रहा है। तो उनने अपनी प्रसन्नता जाहिर करी तो सबने प्रसन्नतावश अपनी आवाज में हुआ हुआ कहना शुरू किया। अब इनका भले ही रंग नीला हो गया था लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पाए और इनने भी आवाज देना शुरू कर दी। और जैसे ही आवाज दी तो सब पहचान गए कि भले ही आप नीले दूसरे प्राणी लग रहे हो लेकिन है तो वही। पकड़ में आ गए, पकड़ में आ गए, और जो दुर्गति होनी थी सो हुई। और हम भी जो है इसी तरह से अपने स्वरूप को भूल करके अपनी इस संसार में जो दुर्गति करवा रहे हैं वो होशियार से कम नहीं है भैया। अपने उस ओरिजिनल फेस को हम भूल गए हैं, इसीलिए तो रोज रोज भगवान के चरणों में आकर इस बात का स्मरण करते हैं कि भगवान संसार में मैं भूला ना रहूं, अपनी वास्तविकता को भूल ना जाऊं। इसलिए सुबह आकर आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं, अपने स्वरूप का स्मरण करता हूं और आपके जैसे बनने के लिए प्रयत्न करता हूं। मेरी पीड़ा आपसे कहां छुपी है। अब इसके बाद शुरू करते हैं अपनी भक्ति, जैसे वादिराज महाराज करते हैं। जब विवेक जागृत हो जाता है, इस पर्याय में बैठी हुई अपने चेतना की वास्तविकता का स्मरण होता है, तब छटपटाहट होती है कि अब क्या करूं, मैं तो अभी तक मनुष्य जीवन को ही अपनी वास्तविकता मान रहा था लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि ये चारों गतियों में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पर्यायें वो मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो यह जो वीतराग भगवान है वैसा ही है। अब छटपटाहट मस्ती है, कैसे कैसे तो मैंने सब दुख सहे हैं, अब भगवान से कहाँ तक कहूँ, तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ छोड़ने का मन हो जाता है। तब क्या कहते कि जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि त्वं सर्वेशा सकृपीति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदि विषये देव एव प्रमाण। अब तो मैं आपके चरणों में आ गया हूँ, जानासि त्वं आप सब जानते हो। मम भव भवे मेरे भव भव में यच्च यादृक् च दुःखं मैंने जितने और जिस प्रकार के दुख भोगे हैं आपसे छिपे नहीं हैं, और दुख किसी और ने मुझे दिए हों ऐसा नहीं, मैंने अपने अविवेक की वजह से, मैंने आपको भुला करके, आपको भुलाना, भगवान को भुलाने का मतलब है अपने आत्मस्वरूप को भुला देना। जो जो लोग भगवान को भूल जाते हैं, मानिएगा वे भगवान अकेले को नहीं भूलते हैं, वे सब अपने आत्मिक स्वरूप को, अपनी वास्तविकता को भूलने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान मैंने अपने आत्म स्वरूप को भुला दिया, या ये कहूं कि मैंने आपको भुला करके अविवेक पूर्वक जैसे और जितने दुख सहे हैं आपसे मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं। स्मरण मपि में शस्त्र वन निष्पिनष्टि, पर अगर मुझे कदाचित आपके चरणों में बैठकर उन दुखों का स्मरण हो आता है तो ऐसा लगता है जैसे छाती में किसी ने तलवार की घुसा दी, इतनी वेदना होती स्मरण करने मात्र से। मैं तो सिर्फ आपके चरणों में ये सुन के आया हूं कि तुम सर्वेशा सकृपि इति च, आपके बारे में मैंने सुना है कि आप सबके स्वामी हो, हालांकि आप किसी पर अपना स्वामित्व आरोपित नहीं करते, इसलिए सब जीव आपको अपना स्वामी मानते हैं। और सकृपीति चा, आप अत्यंत दयालु हो, सब जीवों के प्रति आपके मन में अत्यंत करुणा और दया का भाव। ये जो दो आपकी विशेषताएं हैं, एक तो आप सब जीवों के स्वामी पने को प्राप्त हुए हैं और दयालु भी हैं। अरे, किसी के अंडर में 150 लोग हों और वो दयालु हो तो क्या करेगा? उन 150 को निश्चिंत कर देगा कि जाओ तुम निश्चिंत रहना, तुम सब हमारी शरण में हो, हम तुम्हारे स्वामी हैं तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। यही तो। और आप तो सबके स्वामी हैं और अत्यंत दयालु हैं। अब आपसे मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, बस इतना जरूर है कि मैंने आपकी शरण ली है। तुम सर्वेशः सकृपीति चा त्वाम उपेतोऽस्मि भक्त्या। अब यत् कर्तव्यं तदि विषये देव एव प्रमाणम्। मेरे अविवेक से मैंने संसार में जो जो दुख सहे हैं उनके बारे में अब आपको जो करना है, आप ही मेरे लिए प्रमाण हो। प्रमाण के तीन अर्थ हैं। आप ही प्रमाण हो इसका मतलब अब इस बारे में आपको जो करना हो करो, दुख दूर करना हो तो करो, न करना हो तो न करो, सीधी सीधी भगवान पे छोड़ दो। और जरा सा और आगे बढ़ें तो आप ही प्रमाण हो, अर्थात मेरे जीवन का भला बुरा जो भी मैंने अपने अविवेक से किया है वो सब आपके ज्ञान में झलका ही है, सो वही मेरे लिए प्रमाण है। संक्लेश और अहंकार करने से क्या होगा, मुझे समता भाव रखना चाहिए। आप ही प्रमाण हैं। इसके मायने ये है कि आपके ज्ञान में तो सब झलका है, मैंने जैसा पाप कमाया है और पुण्य कमाया है वो सब आप जानते हैं और उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, तो फिर मैं संक्लेश क्यों करूं और अहंकार भी क्यों करूं, मैं तो समता पूर्वक उसे भोगूं। एक तो दूसरा अर्थ ये हुआ। और फिर कहते हैं कि आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं, अर्थात आपका जैसा स्वरूप है सो ही वो मेरे लिए भी प्रामाणिक है। अब मैं इन दुखों से अगर बचना चाहता हूं तो अकेले आपके चरणों में अपने दुख कहने से और प्रार्थना करने से मेरे दुख दूर नहीं हो जाएंगे। आप अगर मेरे लिए प्रामाणिक हैं तो आपके जैसे बनने का अब मैं पुरुषार्थ करूं तो आसानी से अपने दुखों को दूर कर लूंगा। भक्ति इस तरह भी की जा सकती है क्या? इतना समर्पण हो सकता है जिसमें कि कृपा भी है और अपना पुरुषार्थ भी है। सिर्फ भगवान की कृपा से ही सब होगा ऐसा नहीं है, मेरा प्रयत्न भी उसमें है। ये बात जुदी है कि मैं अपने प्रयत्न के बावजूद भी कृपा आपकी ही मानूंगा, क्योंकि मेरी श्रद्धा और भक्ति और समर्पण तो यही है कि मेरे जीवन में जो श्रेष्ठ हो उसके लिए आप ही तो निमित्त हैं। मेरे जीवन को अच्छा बनाने में आपसे ही तो मुझे प्रेरणा मिली है, इसलिए मानो जब मेरा जीवन अच्छा बनेगा तो मैं तो यही कहूंगा कि आपकी कृपा से हुआ। पर ऐसा सोच करके मैं बैठ नहीं जाऊं, आपकी कृपा मेरे ऊपर तब बरसेगी जबकि मैं आपकी कृपा के लायक अपने आप को बनाऊंगा, जब मैं स्वयं समता भाव रख करके अपने दुखों को सहूंगा, और इतना ही नहीं मैं आपके जैसे बनने के लिए पुरुषार्थ भी करूंगा, तब मैं दुखों से बच सकता हूं। भगवान की कृपा भी कब मिलती है, बड़े लोगों की कृपा का अधिकार हमें कब मिलता है, जबकि हम उनके बताए रास्ते पर चलने का पुरुषार्थ करते हैं, तब कृपा बरसती है। भक्ति हमारे लिए कृपा पूर्वक हमारे जीवन को अच्छा तब बना सकती है जब जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसके बताए मार्ग पर चलें, उसके जैसे बनने के लिए पुरुषार्थ करें। गणेश प्रसाद जी वर्णी हमेशा कहा करते थे, जब स्त्री में आखिरी समय उनके संलेखना का था, लोग कहते थे मिलने जाते थे कि वर्णी जी अब जा रहे हैं वापस, किसी को कुछ कहना तो नहीं है, याद दिला देते थे, क्योंकि वर्णी जी की आदत थी, सबसे उनको बड़ा स्नेह था, प्रेम भाव था, वात्सल्य था, तो पूछ लेते थे सुख दुख के भैया उनका कैसा है, वे ठीक हैं, हमारा आशीर्वाद कह देना। अब जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी ने उनसे कहा कि किसी को कुछ कहना तो नहीं है, तो कहने लगे भैया अब तो सबके प्रति हमारे मन में समता भाव है, और देखो चारित्रवान होवे तो हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, चारित्रवान होवे तो हमारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मतलब हमारा आशीर्वाद तो उसको हमेशा ही है, और चारित्रहीन होवे तो हम आशीर्वाद भी दे देवे तो फलेगा नहीं। ठीक यही स्थिति हमारी भी है, श्रद्धा और भक्ति हमें कब फलित होगी, जब हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उसके बताए मार्ग पर चलेंगे तो श्रद्धा भक्ति अपने आप फलित हो जाएगी, और हम उनके उल्टे रास्ते पर चलें और खूब भक्ति और श्रद्धा भी करें तब भी उस श्रद्धा भक्ति से हमारे जीवन में कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं, परिवर्तन होने वाला नहीं। इसलिए एक चीज़ आज अपन ने सीख ली कि हम अपना स्वयं विवेक जागृत करें, और विवेक जागृत करके अपने राग द्वेष को घटाने के लिए और भगवान के जैसे बनने के लिए रोज रोज पुरुषार्थ करें। भक्ति हमें यही सिखाती है, अकेले भगवान के गुणगान गा लेने मात्र में भक्ति की पूर्ति नहीं होगी, गुणगान के साथ साथ उन गुणों को अपने जीवन में भी प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील हों, तब जा कर के वो भक्ति सफल होगी। और आगे बढ़ते हैं, कैसे सफल हुई थी वो भक्ति, सबको उदाहरण मालूम है वो, और वही वादी राज महाराज भी उदाहरण देके कहते हैं, प्रापत दैवम तवनुति पदैर जीव के नोपदिष्टै पापाचारी मरण समये सार में यू पिसौख्यम कह संदेहो यतुपलभते वासवश्री प्रभुत्तम जलपंजा पैरमणि विरमलै स्तन नमस्कार चक्रम। पहले तो भगवान के चरणों में कह दिया कि आप ही प्रमाण हैं, आपको जो करना हो सो वो करो, हम तो आ गए आपके चरणों में, सरेंडर हैं, अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम अपने जीवन को परिवर्तित करके ही रहेंगे। क्या ऐसा संकल्प हम ले पाते हैं कि अब तो आ गए हम भगवान के चरणों में और कहीं माथा नहीं झुकेगा, अब तो एक जगह वितरागता के लिए माथा झुक गया है, अब कहाँ का कहाँ किस किस से हम निवेदन करते रहें अपने सुख के लिए, अपने दुखों से बचने के लिए हमने तो अंतिम जगह निवेदन कर दिया। ऐसी भक्ति हमारे मन में जागृत हो गई। फिर उदाहरण देते कि देखो तो एक कुत्ते ने भी जो अत्यंत पाप पूर्ण आचरण करता रहा जीवन भर, भगवान को सुना के कह रहे हैं, हाँ भगवान को सुना रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है भगवान कि एक कुत्ता भी जो जीवन भर पाप करता रहा और आखिरी समय जीवनधर कुमार के द्वारा उसने आपका पंच नमस्कार मंत्र सुनकर के और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। तो जो व्यक्ति मणियों की माला लेकर के और जीवन भर आपके नाम का जाप करेगा, अगर वो इंद्रों का सुख ही क्या मोक्ष का सुख भी प्राप्त कर ले तो इसमें क्या संदेह है, कोई संदेह नहीं, वो तो प्राप्त हो ही जाए। बताइए भक्ति मेरे लिए ये सब आसान कर देगी, ये विश्वास है, इतना इतना प्रगाढ़ विश्वास है। मैं अपना पुरुषार्थ तो करूंगा, अगर जीवनधर कुमार के द्वारा नमोकार मंत्र सुनाए अकेले जाने पर ग्रहण किए बिना उसका कल्याण नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, कुत्ते ने अकेले सुनकर के वो स्वर्ग का सुख पा लिया हो, नहीं, उसने उसे ग्रहण भी किया। और जो व्यक्ति मणियों की माला पर आपका नाम स्मरण करता है, आपके जैसे बनने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, तो वो आपके जैसे बन जावे अगर, तो इसमें क्या आश्चर्य है। मैं भी जो है आपके जैसे ही बनने के लिए आपके चरणों में आया हूं, आपके जैसे बन जाऊंगा तो फिर मुझे अपने दुखों का रोना आपके सामने नहीं रोना पड़ेगा। मेरे दुखों को तो आप जानते हैं, मेरे अविवेक से मैंने जो दुख पाए हैं वो अपने आप ही विवेक जागृत होने पर और आपो आप दूर हो जाएंगे। ऐसा जो है अगर अपने मन में श्रद्धा जागृत हो जाए तो ये भक्ति भी हमारे अपने जीवन को अच्छा बना सकती। बस थोड़े से स्वार्थ से बचते रहना चाहिए। अगर इस भक्ति में थोड़ा स्वार्थ आ गया, देखो तो कैसी भक्ति कर रहे हैं वादिराज महाराज, कभी एक बार भी तो नहीं कहा कि जी ठीक कर दो, इतना रोग हो गया हमारा ठीक कर दो, ऐसा कभी निवेदन नहीं किया। भक्ति सचमुच करने वाला इन छोटी मोटी सी चीजों के लिए भक्ति नहीं करेगा, जिनकी संलेखना आपके यहीं हुई है अभी माता जी की, आचार्य वर्धमान सागर जी के चरणों में कुछ दिन पहले, बहुत पुरानी माता जी थी, आचार्य शिव सागर जी की शिष्या थी वो। हाँ, हमारे यहाँ पर परंपरा है कि आचार्य श्री कभी भी किसी भी बहन का या कि हारिका माता जी वगैरह का नाम लेके नहीं बुलाते, इसलिए मैं आप ही से बुलवा लिया मैंने, और ऐसे समझा करके कि ऐसा और वैसा करके पहचान बता करके, ये परंपरा है। तो उनके जीवन की घटना है, उनके लिए व्याधि हो गई और व्याधि ऐसी हो गई कि एक अंजुली पानी भी पेट में नहीं रुकता और बाहर आ जाता। एक दिन, दो दिन, चार दिन, 15 दिन व्यतीत हो गए। आचार्य शिव सागर जी महाराज ने एक दिन धीरे से कहा, एक मंत्र लिख करके उनके आगे बढ़ा दिया कि आरिका जी 15 दिन से पेट में एक बूंद पानी नहीं जा रहा, थोड़ा जाप तो कर लो इस मंत्र का, सब ठीक हो जाएगा। तो उतनी पीड़ा के बावजूद भी मुस्करा करके हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज क्षमा करें, 2 रोटी पेट में डालने के लिए इतने बड़े मंत्र का उपयोग करूं जिससे कि संसार से पार हुआ जा सकता, उससे 2 रोटी मांगूं कि मेरे भीतर रुक जाएं, मुझे नहीं चाहिए। भक्ति, भक्ति ये सिखाती है, भक्ति स्वार्थ नहीं सिखाती है। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहिए है तो सिर्फ अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, इस जीवन को सुखी बनाने के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मुझे कोई अपेक्षा नहीं है भगवान से। मुझे तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मैं आपके जैसे बन सकूं और इस संसार के सब दुखों से अपने आप ही बच जाऊंगा। भैया, ऐसी ये श्रद्धा और ऐसी भक्ति भी धीरे धीरे अगर हमारे भीतर प्रगाढ़ होती जाए तो हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है। इसी भावना के साथ कि हम भक्ति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन अच्छा बनाएं, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवावग शिव के निष्कण पथ में विष कंटक होता हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करके I'm
किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर काला दीवानी मानो जड़ती हो भूल गड़ियां
बहुबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कड़ियां
Yeah.